नमस्कार शिक्षार्थी और श्रोताओं, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान में आप सभी का स्वागत है। शिक्षार्थी और श्रोताओं, आज जो सीनियर सेकेंडरी लेवल के लर्नर्स के लिए हम जो कार्यक्रम लेकर आए हैं, उसका सब्जेक्ट रहेगा लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस। और जिस टॉपिक पर आज हम बात करेंगे वो है मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज। जी हाँ, आपकी बुक का लेसन नंबर 14 है और इस टॉपिक पर अधिक जानकारी दे रही हैं मिस मंजू चुरुंगू जी। तो आइए शिक्षार्थियों, मिलकर सुनते हैं ये कार्यक्रम मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज।
नमस्कार शिक्षार्थियों, आज हम बात करेंगे मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज, मतलब आधुनिकता आने के बाद हमने इन्हीं सर्विसेज को किस तरह मॉडर्नाइज किया आगे, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट चैप्टर है। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आप देखेंगे, क्योंकि जो आज की लाइब्रेरीज हैं वो तो मॉडर्न लाइब्रेरीज ही हैं। तो देखा जाए, जो हम इंट्रोडक्शन में ये कहते हैं कि 1950s में इंटरनेट का एग्जिस्टेंस आया, पर इसकी जो पॉपुलैरिटी हुई वो हम सबको पता है, जो उस समय थे लोग 1990s में शुरू हुई, बहुत ज़्यादा पॉपुलर जो शुरू होने लगा इंटरनेट का, ईमेल और ये सब, वो 1990s में हो गया, जिसकी वजह से कह सकते हैं आप कम्प्लीटली एक रिवोल्यूशनाइज हो गई हमारी लाइफ। अगर हम कहें, पहले हमारे पास खाली फ़ोन्स होते थे, लैंडलाइंस होती थी, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता चेंज आ गया, ईमेल्स हो गए, फास्ट हो गया, लेटर भेजना बंद कर लिया हमने, बैंकिंग सेक्टर में बहुत सारा चेंज आया, एजुकेशन सेक्टर में बहुत चेंज आया, या एंटरटेनमेंट, हर किसी, मतलब कह सकते हैं हम, कोई भी ऐसा सब्जेक्ट नहीं है, कोई भी ऐसा एरिया नहीं है जिससे कि इंटरनेट ने अनछुआ रखा, जिससे कंप्यूटराइजेशन ने अनछुआ रखा। आईसीटी तो हर जगह का एक इंटेग्रल पार्ट बना, चाहे सब्जेक्ट कोई भी हो, अब आप उसमें कहिए मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग फील्ड, एजुकेशन, बैंकिंग, जो मर्जी आप कहिए, या एंटरटेनमेंट कहिए, सभी को इससे दौर से गुजरना ही पड़ा और सबको अपने आप को इम्प्रूव करनी पड़ी है, अपनी चीज़ें, अपनी सर्विसेज अकॉर्डिंग टू द न्यू रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो इसी तरह से लाइब्रेरीज़ भी अपने आप को इवॉल्व करने की ज़रूरत पड़ी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि हम पे इम्पैक्ट नहीं आया, लाइब्रेरीज पे भी इम्पैक्ट आया, जिसकी वजह से क्योंकि नॉलेज सेंटर्स हैं लाइब्रेरीज, जहाँ से आपको देखा जाए कि हर किसी की उम्मीद लाइब्रेरी से जुड़ी रहती है, और जहाँ तक कि आपके रिसर्च का काम हुआ या आपके नॉलेज शेयरिंग का काम हुआ, इंफॉर्मेशन शेयरिंग का काम हुआ, तो इस सब चीज़ों में लाइब्रेरीज का बहुत बड़ा योगदान रहता है, और इस योगदान को बहुत ज़्यादा स्पीड से इम्प्रूव करने के लिए हम लोगों ने इंटरनेट का भी जो सहारा लिया है, वहाँ से भी जो हमने सर्विसेज को इम्प्रूव किया वो है मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज। इस चैप्टर में हम आप लोगों को क्या बताने जा रहे हैं, हम बताने जाएंगे आपको इम्पोर्टेंस क्या है मॉडर्न लाइब्रेरीज की सोसाइटी में। अगर लाइब्रेरीज चेंज हो गई हैं, मॉडर्न हो गई हैं आज, तो इनकी क्या इम्पोर्टेंस है, कैसे हमें इंटरनेट की वजह से लाइब्रेरियों के जो काम है, जो फंक्शंस हैं लाइब्रेरीज के, वो कैसे चेंज हो गए हैं, और हम बात करेंगे कौन सी सर्विसेज हैं जो लाइब्रेरीज हमें प्रोवाइड करती हैं, जिसमें हमें नए टूल्स और टेक्नोलॉजीज ऐड कर दिए गए हैं। पहले बाय मैनुअल हम कर रहे थे, बाय हैंड कर देते थे, ये सब कौन से टूल्स हैं जो अब हमें अपने हम लोगों को लाइब्रेरीज को मॉडर्नाइज कर देती है। और हम आपको इसके बाद ये भी बताएंगे मैनुअल और कंप्यूटराइज सर्विसेज में कितना अंतर आ गया है, क्या क्या अंतर हैं वो, और ऑनलाइन रिसोर्सेज, जो बहुत अच्छी ज़रूरी चीज़ है वो है ऑनलाइन रिसोर्सेज, कौन से ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं, कहाँ से आते हैं, कैसे काम करते हैं, और हम कैसे इनकी मदद से अपने काम को इजी कर सकते हैं। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे मॉडर्न लाइब्रेरी है क्या। मॉडर्न लाइब्रेरी जो है एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सामाजिक संगठन है, जिसको जो बेस्ट यूज टेक्नोलॉजी का करती है, ताकि वो आपको इंफॉर्मेशन सर्विसेज प्रोवाइड कर पाए, आपको इंफॉर्मेशन सर्विसेज दे पाए। ये सर्विसेज किन लोगों के लिए है, ये है अलग अलग तरह के लोगों के लिए, इसमें आप एक ही तरह के लोग नहीं हैं, जिसे कहेंगे बहुत विभिन्न तरह के लोग हैं जिनको ये सर्विसेज की ज़रूरत है, और हर किसी की ज़रूरत उनके हिसाब से है। इसमें हम ये नहीं डिसाइड कर सकते हैं कि इसको ये इस सर्विस की ज़रूरत है उसे इस, ये आपका जो यूज़र है, जो आपका क्लाइंट है, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आपके सर्विसेज होती है प्रोवाइड की जाती है। और इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है मॉडर्न लाइब्रेरीज का कि ये 24/7 है। ये अपने आप में जो इसकी सर्विसेज हैं, ये आपने लाइब्रेरी बंद कर दी तो आपकी सर्विसेज बंद नहीं हुई, यहाँ पर ये फ़र्क आता है। आपकी लिमिटेड नहीं है जो आप ऑफ़र कर रहे हैं सर्विसेज, ये सब सर्विसेज आपको 24/7 365 डेज चलती रहती हैं। तो इसलिए इन चीज़ों का इस पर इंटरनेट से बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है, इंटरनेट एक बहुत बड़ा इंटेग्रल पार्ट रहा है इसका, जिस वजह से हम लोग मॉडर्न लाइब्रेरीज का सपना पूरा कर पाए हैं। तो मॉडर्न लाइब्रेरीज जो हैं, देखा जाए सार्वजनिक रूप में क्या करती हैं, वो समाज के लिए किस तरह का कार्य करती हैं या पब्लिक के लिए किस तरह का कार्य करती हैं, वो ये है कि वो आपको इन्फॉर्मेशन देती है। इनका मेन फंक्शन क्या है, सोशल फंक्शन ये है कि आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना आपके हिसाब से है। इसके दो इम्पॉर्टेंट जो रोल्स बताए गए हैं, पहला है कि आपको लोकल सेंटर ऑफ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना, फिर दूसरा इन्फॉर्मेशन और नॉलेज, दोनों चीज़ें। सेकंड में है लोकल गेटवे, आप नेशनल और ग्लोबल नॉलेज के लिए भी रहते हैं। पहले तो आप लोकली भी, अगर आप पब्लिक लाइब्रेरीज को देखेंगे तो लोकली आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है वहाँ पर, और आप इंटरनेशनल लेवल पे देखेंगे जहाँ आपका रिसर्च का वर्क है, वहाँ आप लोकल गेटवे बन जाते हैं नेशनल और इंटरनेशनल नॉलेज के लिए, ग्लोबल नॉलेज के लिए। तो क्या कहा जाता है, ये एक तरह का गेटवे बनाया गया है ताकि हमारे बच्चे जो हैं, हमारे यूज़र्स जो हैं, जो हमारी नई पीढ़ी है, वो इस नॉलेज के स्पेक्ट्रम को हम उन्हें इंट्रोड्यूस करें। वहाँ पर इतनी बड़ी ज़्यादा किताबें हैं, वाइड स्पेक्ट्रम किताबों का है, बहुत ज़्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जिनसे उनका माइंड एकदम आप कहेंगे उजागर हो जाता है, इग्नाइट हो जाता है। ये हम लाइब्रेरीज का, हमारे लाइब्रेरीज जो है ये उस तरह का रोल प्रोवाइड कर लेती हैं, जहाँ से आप अपने यूज़र्स को, जो चाहे वो यूज़र तो आपके स्कूल लाइब्रेरी से भी शुरू हो जाते हैं, उस तरह से आप काम शुरू करते हैं ताकि उनकी डेवलपमेंट में बहुत बड़ा आपका रोल हो जाता है। इससे आप क्या करते हैं, इससे आपके जो बच्चे हैं, जो आपके यूज़र्स हैं, वो उनकी रीडिंग हैबिट भी अच्छी बन जाती है, अर्ली स्टेज से बन जाती है, क्योंकि आपको लाइब्रेरी में आने की आदत हो जाती है, लाइब्रेरी में पढ़ने की आदत हो जाती है, और लाइब्रेरी भी आपके लिए इंटरेस्ट क्रिएट करती है। उन्हें भी ये अंदाज़ा हो जाता है कि आप क्या चाहते हो, उस इंटरेस्ट क्रिएट करने की वजह से आपकी एक रीडिंग हैबिट जो है इनकलकेट हो जाती है, वो चाहे बड़े हों छोटे हों। इस तरह से हमारी जो लाइब्रेरीज हैं, इनका यहाँ पर बहुत बड़ा रोल हो जाता है। मॉडर्न लाइब्रेरीज़ में हम क्या करते हैं, बेसिकली नॉर्मल लाइब्रेरी तो आप सभी को पता है कि कैसी होती है, आप सब गए हैं फिज़िकल लाइब्रेरी में, आप हर बंदा गया, चाहे वो स्कूल हो, कॉलेज हो, यूनिवर्सिटी हो, हर किसी ने फिज़िकल लाइब्रेरी तो हमेशा ही देखी हुई है। पर मॉडर्न लाइब्रेरी में हम क्या करते हैं, उसी तरह से हम सेलेक्ट करते हैं अपने रिसोर्सेज को, प्रोक्योर करते हैं, पहले हमने सेलेक्ट किया हमारी लाइब्रेरी के हिसाब से, हमारे यूज़र्स के हिसाब से हमें क्या चाहिए, फिर हम उन्हें क्वायर करते हैं, फिर ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसी इन्फॉर्मेशन को हम डिलीवर भी करते हैं, ताकि जो सबसे रेंज ऑफ करंट और लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास, और जो क्वालिटी इन्फॉर्मेशन रिसोर्सेज हो, वो हमारी यूज़र पॉपुलेशन जो है, जो कि अलग अलग तरह की उनकी ज़रूरतें हैं हमारे पॉपुलेशन की, हमारे यूज़र्स की, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से हम उनकी कहे जाए तो उनके हिसाब से हम जब उस इन्फॉर्मेशन को उनको प्रोवाइड करते हैं, तो हम जिसे कहते हैं खरा उतरना, काइंड ऑफ हम उनके हिसाब से कर पाएंगे, तो तब उनका फ़ायदा हो गया। ये मॉडर्न लाइब्रेरी का एक बार पहला ही रूल है। दूसरा क्या है, आपका मेंबर कोई रीजनल हो, नेशनल हो, उसमें हम क्या कर लेते हैं, हम अपने जो हमारे पाठक हैं, यूज़र्स जो भी हैं हमारे, उनकी नीड्स को पूरा करने के लिए हम कोशिश करते हैं, हम एक नेटवर्किंग, नेशनल नेटवर्क हो हमारे पास। जैसे एग्जांपल में आप देखोगे, हम लोग डेलनेट से जहाँ कनेक्टेड रहती है, NIS भी रहता है, उसी तरह से आप देखो जितने कॉलेज के बच्चे हैं या यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, सब लोग डेलनेट से भी कनेक्टेड रहते हैं। उन्होंने स्कूल्स के लिए एक अलग सा रिसोर्स सेंटर भी बनाया हुआ है ताकि स्कूल टाइप की जो बुक्स हैं और जो उनकी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जो उन्हें चाहिए वो भी करते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन अपने पास अवेलेबल रख करने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ इधर उधर से भी इन्फॉर्मेशन जो है कलेक्ट कर सकते हैं, अपनी नेटवर्किंग से भी कर सकते हैं, ताकि चाहे जितने भी कम आपके पास हो, आपके रिसोर्सेस ज़्यादा हो जाते हैं इन इस नेटवर्किंग की वजह से, जो आप किसी भी नेटवर्क का एक मेंबर बन जाते हैं, पार्ट बन जाते हैं। हम लोग एक अच्छा सा अपना वेबसाइट मेंटेन करते हैं, जो कि हर समय आप उसे इन्हांस कर सकते हैं, आप उसकी सर्विसेज को बदल सकते हैं, क्योंकि टेक्नोलॉजी तो बढ़ावा देती है, हमेशा टेक्नोलॉजी में चेंजेस आते रहते हैं। आप देख जितने की ऐप्स हों, आज अगर ये व्हाट्सएप में ये फीचर है तो कल दूसरा फीचर आ जाता है, तो ये ऐप्स का ये भी फ़ायदा हो जाता है। ये अपनी वेबसाइट को हम चेंज कर सकते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे जो यूज़र्स से बच्चे हैं वो ये भी जाने अपने डैशबोर्ड पे। तो उस तरह से जब हम अपने वेबसाइट को एक तरह से सही तरह से अपडेटेड रखते हैं, तो हमारी जो सर्विसेज हैं वो भी इन्हांस हो जाती हैं। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो सर्विसेज लाइब्रेरी दे देती है, नॉर्मल सर्विस के अलावा जो भी यूज़र्स को हम सर्विस दे देते हैं, हम वो एक जगह पे, मतलब एक जिसे कह सकते हैं ना प्लेस बेस्ड, जगह के बेस पे नहीं होती हैं। ये आपको कभी भी मिल जाती, कहीं से भी मिल जाती है। कभी जो लाइब्रेरीज हैं यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम्स रेगुलर बेसिस पे क्यों करती हैं, वो चाहती हैं जो भी लाइब्रेरी में हमारे पास सर्विसेज हम जो प्रोवाइड करते हैं उस सर्विस का फ़ायदा आप उठाएं। तो यूज़र एजुकेशन प्रोग्राम्स चलते रहते हैं, जिससे कि आपको इन्फॉर्मेशन लिटरेसी प्रोग्राम्स यूज़र्स तक मिल जाते हैं, उन्हें पता चल जाता है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं हम लाइब्रेरी को, इन्फॉर्मेशन लिटरेसी में क्या क्या नई चीज़ें डली हुई हैं, क्या क्या दिखाया गया है। तो इस तरह के ये जो प्रोग्राम्स हैं मोस्टली लाइब्रेरीज कंडक्ट करती हैं, जिससे कि आपका आउटलुक है बेटर होता रहता है, आप जान जाते हैं नई चीज़ों के बारे में, तो आधुनिक चीज़ों के बारे में। तो इससे हम लोग मॉडर्न लाइब्रेरीज में क्या करते हैं, ज़्यादातर हम लोग कोशिश यही करते हैं, हम अपने यूज़र्स से कनेक्टेड रहते हैं रेगुलर बेसिस में। हम उन लोगों तक ये भी बताते हैं कि हमने क्या नया ऐड करा है अपनी लाइब्रेरी में, हम ऑन उस वजह से हम लोग उन्हें अट्रैक्ट भी कर सकते हैं, ताकि जो हमारे रिसोर्सेज हैं, जो हमारी मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन जो है हम उन तक पहुंचा पाएँ आराम से, और वो इसका मैक्सिमम यूज़ कर पाएँ। हम लोग फ्री इंटरनेट एक्सेस भी यूजुअली लाइब्रेरीज में आप हमेशा देखेंगे, आपके वाईफाई फैसिलिटी हर लाइब्रेरी में है, ताकि आपके स्टूडेंट जो आएँ वो उसका फ़ायदा उठाएँ। आपके रिसर्च स्कॉलर्स हैं, राइटर्स हैं जो पेपर लिखते हैं, या कोई भी रिसर्च एक्टिविटी करती है, जॉब सर्च करते, जो भी है, इस तरह की फैसिलिटी जो है वो अपने यूज़र्स को देने से फ़ायदा हो जाता है। वो अपडेटेड रहती हैं, वो अट्रैक्ट भी होते हैं लाइब्रेरी की तरफ, ताकि उन्हें ये सब फैसिलिटीज़ मिलती, जो कि सपोज़ आप घर में हर चीज़ तो नहीं कर पाएंगे, तो यहाँ पर एटलीस्ट आपको बजट भी है और आपके पास फैसिलिटीज़ भी हैं और आप ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं, आपके पास स्टाफ भी है, तो ये सब चीज़ें आप अवेलेबल कर पाते हैं। तो कभी कभी लाइब्रेरीज़ में अच्छी सी एग्जिबिशंस भी होती, हमारी लाइब्रेरी भी हमेशा एग्जिबिशंस करते रहते हैं, कई तरह के एग्जिबिशंस हम लोग करते हैं, हम अपने वीकली बेसिस पे भी एग्जिबिशन करते हैं अपने यूज़र्स के लिए, ताकि उन्हें ये पता चल जाए कि नए सब्जेक्ट में क्या ऐड हुआ है, पुराने हमारे पास कितनी तरह की किताबें हैं, किस सब्जेक्ट में किस तरह की नॉलेज हमारे पास है। और वहाँ पर कभी कभी तो आप देखेंगे लाइब्रेरीज में डिस्कशन ग्रुप्स भी बात कर सकते हैं, या क्वाइट जोन्स भी हैं, जहाँ आप चुपचाप अपना हेडफोन लगा लिया और आराम से आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, या कोई मीटिंग ले सकते हैं इस तरह के। जैसे आप देखेंगे मॉडर्न ऑफिसेज में, आप देखेंगे आपको वर्क स्पेसेस मिलती हैं हर जगह, आप वर्क स्पेस में कैसे आप अपना काम कर पाते हैं, कॉर्नर में ले लिया आपको, ये पहले लाइब्रेरीज में ही ज़्यादा फैसिलिटीज़ होती थी। जैसे आप मॉडर्न कॉन्सेप्ट में ये हो गया कि आपको वर्क स्पेसेस मिल जाती हैं, यू कैन गो विथ योर लैपटॉप और अपना आराम से बैठ के वहाँ पर अपना काम कर लिया, ये सब पहले मोस्टली लाइब्रेरीज में ही ये वाली फैसिलिटीज़, स्पेस, इंटरनेट, वाईफाई, ये सब चीज़ें हैं। और मॉडर्न लाइब्रेरीज का सबसे बड़ा एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर ये भी है कि हम जो है फिजिकली डिसेबिलिटीज़ को भी इंक्लूड करके रखते हैं। हम देखते हैं कि उनके लिए अगर कोई विजुअली इम्पेयर्ड है तो उनके लिए हम किस तरह की फैसिलिटीज़ लाइब्रेरी को देख सकते हैं, वो कैसे एक्सेस कर सकते हैं कंप्यूटर को ताकि वो इंटरनेट रिसोर्सेज यूज़ कर पाए जो उनके पॉइंट ऑफ से उन तक पहुँच सके और वो उसका यूज़ कर सके, उसका लाभ उठा सके। तो हम कभी कभी अगर कोई फिज़िकली डिसेबल है तो उस पॉइंट में आपको डेफिनेटली जो आपकी लाइब्रेरी है वहाँ तक पहुँचती, उस तक पहुँचती हैं। तो ये कॉन्स्टेंटली हम लोग देखते हैं कि इन सब चीज़ों के लिए हम अपने आप को इवैल्यूएट करते रहते हैं, अपने कलेक्शन को चेंज करते रहते हैं, देखते रहते हैं कि हम अगर अपने यूज़र्स को देख के पता चलता है हमें, हाँ ये कलेक्शन उन्हें उन पे ज़्यादा यूज़ हो रहा है या इस सब्जेक्ट में आपकी ज़्यादा यूज़ हो रही है, तो आप कोशिश करेंगे उसी सब्जेक्ट में आपको ज़्यादा बुक्स ले लें, ज़्यादा जर्नल्स अक्वायर करें या ज़्यादा तरह की इंफॉर्मेशन उसमें गैदर करेंगे। तो ये फीडबैक से भी हमें पता चल जाता है कि आपका जो यूज़र है वो किस तरह का है और आपका यूज़र चाहता क्या है। ये लाइब्रेरी का है, मॉडर्न लाइब्रेरी का। आप हम मॉडर्न लाइब्रेरी किसे कह सकते हैं? मॉडर्न लाइब्रेरी वो ही है लाइब्रेरी। ये आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्या है? अगर आप देखोगे NIS की वेबसाइट पे जाएंगे, जो कि हर बच्चा जाता है, अपना एडमिशन करता है, आपके डैशबोर्ड पे एक आपको मिलता है दीप के नाम से, आप दीप पे चले जाते हैं तो आप देखते हैं एक लाइब्रेरी है वहाँ पर, वो मॉडर्न लाइब्रेरी है, फिज़िकल लाइब्रेरी जो हमारे सबके लिए है, जहाँ तक कभी कभी आप नहीं पहुँच पाते। आपने देखा होगा डेफिनेटली कोविड में हम लोगों के लाइब्रेरीज ताले लगे रह गए, किताबों वहीं के वहीं रह गई, कोई कहीं नहीं जा पाया, कोई टच नहीं कर पाता था चीज़ों को। तो उस समय हमें किसने बचाया? हमें हमारे इन्हीं चीज़ों ने बचाया, जैसे कि हमने अपने लिए नई लाइब्रेरी क्रिएट की दीप के नाम से। डिजिटल रिसोर्सेज हैं इसमें, आपके पास एकेडमिक रिसोर्सेज भी हैं इस पर, और जो हमने परचेज़ किए हुए हैं वो भी काफ़ी सारे रिसोर्सेज हैं, जर्नल्स, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, पुराने भी, आर्काइवल भी, सब कुछ है इस पर, जहाँ आप जा कर के पढ़ सकते हैं। तो ये है मॉडर्न लाइब्रेरी। एक बहुत सारी लाइब्रेरीज हैं, पर NIS की अपनी भी लाइब्रेरी है, जहाँ पर किसी आईडी या पासवर्ड की भी आपको ज़रूरत नहीं है। आप सीधा अपने डैशबोर्ड से या NIS की वेबसाइट से जा कर के दीप पे जा सकते हैं और वर्चुअल लाइब्रेरी को विज़िट कर सकते हैं। तो अब हम सेकंड पार्ट पे पहुँचते हैं। सेकंड पार्ट इसका है नीड ऑफ मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज। हमें क्या ज़रूरत थी कि हम लोग क्यों हमने मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज का उसके बारे में सोचा? तो हम पहले फिज़िकल लाइब्रेरी तो कर ही रहे थे, क्यों? क्योंकि हमारी जो लाइब्रेरी थी पहले वो प्लेस बेस्ड थी, जगह, जैसे बताया मैंने आपको कि जब कोई ऐसे इशू हो गए जिसमें हम जा नहीं पाए, या फिज़िकली जो हमने कहा बताया अभी, फिज़िकली डिसेबल हैं, कोई इशू है, आप नहीं जा पाते, तो वहाँ के लिए आपको क्या है, आपके जो इंफॉर्मेशन नीड्स हैं हमारे लिए यूज़र्स की, वो हम इससे प्लेस बेस में नहीं कर पाएंगे उतना जितना कि हम आपको मॉडर्न लाइब्रेरी से कर पाएंगे। जो फिज़िकली कंसल्ट कर पाते हैं उनकी नीड्स तो पता चल जाती है, मगर देखा गया है कि पिछले 3 सालों से, 3 दशकों से कहते हैं, जब से इंटरनेट आया है तब से मॉडर्न टेलीकम्युनिकेशन या बाकी सब चीज़ें, डाटा प्रोसेसिंग है, मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम्स हैं, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, इन सब पे जो इम्पैक्ट आया जिसने कि लाइब्रेरी की फंक्शनिंग और लाइब्रेरी का एनवायरनमेंट को भी बदल दिया है, इन सब चीज़ों की वजह से लाइब्रेरी को भी अपने आप को एनहांस करना पड़ा, बदलना पड़ा है। अगर लाइब्रेरीज कंटिन्यूसली अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगी, इवॉल्व नहीं करेंगी, नए तरीके नहीं अपनाएंगे, तो हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक सर्विस सेक्टर है जहां हमको अपने आप को इवॉल्व करते रहना पड़ेगा, तभी लाइब्रेरीज सर्व कर पाएंगी। पहले तो खाली गवर्नमेंट फंडेड लाइब्रेरीज होती थी, अब तो हर ऑर्गेनाइजेशन के पास अपनी लाइब्रेरी भी रहती है, ताकि क्योंकि वो कोई ज़रूरी नहीं है, दे चार्ज यू फॉर द डॉक्यूमेंट यू हैव आस्क्ड। अगर आपने कुछ मांगा, किसी तरह की इन्फॉर्मेशन मांगी, क्योंकि उस पर भी तो खर्चा होता है, तो वो उसका चार्ज भी करते हैं। अगर हमने लाइब्रेरी दीप बनाया है तो इस पर हम बहुत खर्चा भी कर रहे हैं, ये फ्री में नहीं बनी है। या लाइब्रेरी में हमारी फिजिकल लाइब्रेरी है, उस पर भी हम बहुत खर्चा करते हैं, फिजिकल बुक्स भी लाते हैं। तो इस तरह से हमारे लिए क्या है कि कंटिन्यूसली चेंज होते रहना पड़ता है, इवॉल्व होते रहना पड़ता है। फिजिकल बुक्स से हम लोग अब ज़्यादातर ई बुक्स पर आ गए हैं, ताकि हमारी जो ई बुक है एक के नहीं सभी बच्चों के काम आ जाए। आज एक पढ़ रहा है, कल दूसरा भी पढ़ेगा, उसमें कोई ख़राबी तो होनी नहीं है। हाँ, ये हम देखते हैं, अगर आपने कोई बुक ज़्यादा रिकमेंड करी है तो उसके लिए हम सोचते हैं कि हाँ, उसकी अगर ज़्यादा मैक्सिमम यूज़र्स हो जाए, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ यूज़र्स बढ़ा देते हैं उसमें, ये कर सकते हैं ताकि हर किसी को एक्सेस मिल जाए उस बुक तक, इन्फॉर्मेशन तक। तो अगर कहेंगे तो कि ये जो बदलाव है ये हमारे लिए एक मतलब लग्जरी नहीं है कि हम बदलाव करना नहीं चाहते, और हमें तो ये सब करना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज आपको सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा। लाइब्रेरीज अब टेंजिबल हैं, अगर आपने कोई भी आर्टिकल या कुछ मांगा है कहीं से इन्फॉर्मेशन, तो आप उससे पे भी करते हैं। चाहे गवर्नमेंट लाइब्रेरीज एक भी रुपया ले, पर लेना पड़ेगा, क्योंकि इसकी मेंटेनेंस भी काफ़ी होती है। आपको स्टाफ कम हो जाता है, पर जो सॉफ्टवेयर्स की मेंटेनेंस है वो रहती है। हर साल आपको सॉफ्टवेयर्स रिन्यू करवाने पड़ते हैं, या आपके जो ई बुक्स हैं, ई जर्नल्स हैं, डाटाबेसिस हैं, वो रिन्यू करने पड़ते हैं, वो सब प्रोसेस करना पड़ता है। तो मॉडर्न लाइब्रेरीज भी इसलिए अपने आप को अपडेट करते ही रहते हैं, ताकि जो समाज में बदलाव आ रहे हैं, जो भी नए टॉपिक्स आ रहे हैं, वो सब हम अपग्रेड करते रहें। तो देखा जाए जो ये सब क्यों हमें करना भी पड़ता है, क्योंकि आप देखेंगे जो नई हमारी पीढ़ी है, नई जनरेशन जो है, उनके पढ़ने का तरीका भी अलग हो गया है। उनके फ़ोन तो जब से वो पैदा हुए हैं उनके हाथ में फ़ोन है, उनको इंटरनेट पता है, जो कि हमने बाद में देखा है, उन्होंने डे वन से देखा है। तो उनके लिए तो किताब इतना बहुत बड़ा एक ज़रूरी चीज़ नहीं है, क्योंकि उन्होंने तो टैबलेट्स, फ़ोन्स और ये सब पे भी काम किया। जो उनका व्यवहार है, जो इन्फॉर्मेशन ढूंढने का तरीका है, वो भी बदल गया है, और हमें अपने आप को उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, उनकी नीड्स के हिसाब से हम उसे अपडेट करते रहते हैं। तो अब हमसे ये भी कहा जाता है कि देखा जाएगा तो जो यूज़र्स हैं उन वो हम हमसे अपनी उम्मीद भी रखते हैं कि लाइब्रेरी अपने आप को अपडेट करे, और पहले जैसा था कंटेंट बेस्ड थी लाइब्रेरी, खाली जो कंटेंट था, अब जो कहते हैं अब है ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड। आपको खाली कंटेंट की तरफ राह नहीं दिखानी है, आपको ये नहीं बताना है कि ये जर्नल है, ये मैगज़ीन है, ये टॉपिक है, नहीं, आपको कभी कभी इन्फॉर्मेशन से ही रिलेटेड आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन रिट्रीव करके देनी पड़ती है। तो लाइब्रेरीज़ को ट्रांसफॉर्म करना, उनकी एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से, डिमांड्स के हिसाब से, ताकि यूज़र जो पॉपुलेशन है हमारी, वो चार दीवारी की लाइब्रेरी से बाहर आ करके हम लोग मॉडर्न लाइब्रेरीज़ का यूज़ कर सके, नई तकनीकों से, नई टेक्नोलॉजी से, इनोवेटिव आइडियाज़ को लेकर के हम अपने क्लाइंट्स को अपने साथ जुड़ा रख सकते हैं। अगर हम अपने आप को अपडेट नहीं करेंगे तो हमारे क्लाइंट्स भी नहीं रह पाएंगे। अगर हम ये कहेंगे, इन शॉर्ट में ये कहेंगे, ये लाइब्रेरी सर्विस जो है ये हमारी ज़रूरत है, ये हमारा पार्ट बन गया है, इम्पेरेटिव है ये, क्योंकि सूचना को ढूंढने का जो तरीका है वो यूज़र्स का बदल गया है, वो डिमांड्स जो हैं, एक्सपेक्टेशंस जो हैं, अपेक्षाएँ जो है वो भी बदल गई हैं, और जो अवेलेबिलिटी है टेक्नोलॉजी की, वो वाली फैसिलिटी और अवेलेबिलिटी भी बदल गई है। तो अब इसके बाद हम थर्ड पार्ट पे इस पर देखेंगे मैनुअल और कंप्यूटराइज सर्विसेज में क्या है। मैनुअल में हम क्या करते हैं, आपको मालूम है ये जो नॉर्मल मैनुअल लाइब्रेरीज़ में रिकॉर्ड्स, रजिस्टर्स, कार्ड्स, ये सब यूज़ करते हैं, मैनुअल सिस्टम से ही हम एग्जीक्यूशन करते हैं हर एक्टिविटी का, विथ हैंड लिखते हैं, कंप्यूटर्स का कहीं इंटरवेंशन नहीं होता है। ऐसी सर्विसेज हम लोग देते हैं जो मैनुअली देते हैं, उसी में हम लोग समझ लो जैसे विदाउट एनी फिज़िकल कार्ड्स बनाते हैं, फिज़िकली हम कैटलॉगिंग करते हैं, फिज़िकली हम एब्स्ट्रैक्ट्स बनाते हैं, या इंडेक्सिंग करते हैं, ये सब फिजिकली बाय हैंड करते, जहाँ पर हम कंप्यूटर का कोई भी इस्तेमाल नहीं करते थे। पर अब जो हमने कंप्यूटराइज सर्विसेज में हमने क्या किया है, हमने जो डेटाबेसेस लिए हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम रखा हुआ है, हर किसी का लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर सिस्टम है, वहाँ पर हम लोग लाइब्रेरीज का सारा अक्वायर करना, एक्विजिशन, कैटलॉगिंग करना, सर्कुलेशन या रिकॉर्डिंग डिटेल्स, सब जर्नल्स का सभी कुछ उसी डेटाबेस सॉफ्टवेयर पे ही होता है, जिससे हमारे रूटीन के जो सारे काम हैं वो एफिशिएंटली और स्पीड से भी हो जाते हैं। एक सिंपल शब्दों में ये कहेंगे कि उससे हमारे जो हाउसकीपिंग ऑपरेशन है वो काफ़ी हद तक स्मूथ हो गए हैं, क्योंकि कोई भी काम रिपीटेड नहीं करना पड़ता है, सेम काम को बार बार ही नहीं रिपीट करना पड़ता है। उस केस में हमारे पास काम जो है एक बार ही कर लिया हमने अपने सॉफ्टवेयर में, तो वही काम आगे भी चलता रहता है। अभी तक हम बात कर रहे थे मैनुअल सर्विसेज, फिर कंप्यूटर सर्विसेज में, अब हम देखते हैं डिफरेंस क्या है मैनुअल और कंप्यूटराइज सर्विसेज में, कैसे कैसे क्या फ़र्क आया, क्या बदलाव आया। मैनुअल में अगर हमने सर्कुलेशन किया, जिसे इशू एंड रिटर्न कहते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, कार्ड सिस्टम रखते हैं या रजिस्टर पे इशू करते हैं। पर कंप्यूटराइज्ड में हम लोग क्या करते हैं, एक सिंगल कार्ड सिस्टम बन जाता है, जहाँ पर एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिल जाता है सारे मेम्बर्स को, जो लाइब्रेरी के मेम्बर्स हैं वो सॉफ्टवेयर में, डेटाबेस में उसकी एंट्री हो जाती है, तो आपको बोरिंग फैसिलिटी वहाँ से कंट्रोल हो जाती है। आपकी बोरिंग फैसिलिटी जो है आपकी, जो अगर मगर लाइब्रेरी आपका फुली ऑटोमेटेड होनी चाहिए, आपका कोई ऐसा डॉक्यूमेंट नहीं है जो बारकोडेड नहीं है, जिसकी इंफॉर्मेशन आपके से नहीं है, डेटाबेस में नहीं है, ये सब होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप सर्कुलेशन उस तरह से कर सकते हैं। तो मैन्युअली भी हम टेक्निकल सेक्शन में क्या करते हैं, लाइब्रेरी वाले कैटलॉगिंग कर लेते हैं, फिर उसकी कार्ड बनाते हैं, फिर वहाँ से एक लिस्ट प्रिपेयर कर लेते हैं, न्यू एडिशन हो गया। यहाँ पर आपका ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस कैटलॉग है, ये जहाँ आपने कंप्यूटर में एंट्री कर ली कैटलॉगिंग में या एक्विजिशन में, आपका अपने आप ट्रांसफ़र हो जाता है, आपका ओपैक में पता चल जाता है। ऑनलाइन पब्लिक एक्सेस में आप देख सकते हैं नई किताबें इस पीरियड से इस पीरियड तक कहाँ आ गई हैं। पहले मैनुअली हम लोग बिब्लियोग्राफीज बनाते थे, इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग हैंड लिखते थे वो, ताकि हम रिसर्चर्स तक पहुंचा पाए। यहाँ पर आपको इंडेक्सिंग एब्स्ट्रैक्टिंग सब कुछ आपको ऑनलाइन एक्सेस में मिल जाती है, कमर्शियल पब्लिशर्स अपने आप करके दे देते हैं और वो बुक के साथ ही आपको मिल जाती है। तो करंट अवेयरनेस सर्विसेज में हम लोग पहले कोशिश करते हैं कि जर्नल्स की कॉपी करें, कंटेंट्स की, टेबल ऑफ कंटेंट को ले लें और उसकी फोटोकॉपी करके फिर उसको कंपाइल कर लें, चाहे अगर आपकी बहुत लाइब्रेरी है तो सब्जेक्ट वाइज करेंगे, नहीं तो अल्फ़ाबेटिकली करेंगे। पर यहाँ पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्या करना है, यूज़र्स अपने आप पता चल जाता है उनको कि नए जर्नल्स, नई बुक्स क्या क्या आई हुई हैं, क्योंकि आपको मेल अलर्ट्स हो जाती हैं, आरएसएस फीड्स और ईमेल अलर्ट्स हो जाते हैं, पब्लिशर्स के थ्रू भी आपको जो टेबल ऑफ कंटेंट है वहाँ पर भी आपको अलर्ट्स मिल जाती हैं। जो आपके हिसाब से कोई नया टॉपिक ऐड हुआ हो, अगर आप पब्लिशर के साथ रजिस्टर हैं, जो रजिस्ट्रेशन फ्री होती है, अब पब्लिशर भी आपको बता देगा कि हमने कौन सी नई जर्नल, कौन सी बुक क्या निकाला है, ये आप वहाँ से कर लेते हैं। रेफरेंस सर्विसेज जो है यहाँ पर फेस टू फेस होती हैं, आपने मुझसे पूछा, मैंने आपको बताया, पर यहाँ पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं, मुझसे मैसेज कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पर हम उस तरीके से भी बताएंगे, आपको फिजिकल लाइब्रेरी में आने की ज़रूरत नहीं है। मॉनिटरिंग में अगर आपको चोरी से, डैमेज से बचाना है अपनी लाइब्रेरी को, यहाँ पर मॉडर्न लाइब्रेरी में आप क्या करेंगे, कंप्यूटराइज्ड सर्विसेज में क्या करेंगे, एक सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल करेंगे, जो आपको सिक्योरिटी पर्पज़ से आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देता रहेगा। स्टॉक टेकिंग में हम फिज़िकली ज़्यादातर कई तरह से फिज़िकली स्टॉक टेकिंग कर लेते हैं, शेल्फ लिस्ट के साथ कंपेयर करके, फिर हम अपना देखते हैं कि हमारे पास ओरिजिनल स्टॉक क्या था और इसमें मिसिंग क्या है। उससे अगर कंप्यूटराइज करना है तो RFID टेक्नोलॉजी है, जो आपको अगर अपने बुक्स को बारकोड भी किया है तो अपने अपने बारकोड से भी स्कैन कर करके आप देख सकते हैं कि आपके पास क्या बुक्स हैं और क्या मिसिंग है। मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज में अगर आप देखेंगे क्या 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 है ये। अभी तो हमने मैनुअल और कंप्यूटराइज सर्विसेज के बारे में बात किया। मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विस में जैसे हम फिजिकल लाइब्रेरी सर्विस में किताबें प्रोक्योर करते हैं, प्रोसेस करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं प्रिंट में, यहाँ पर हम लोग बुक्स, जर्नल, मैगजीन्स फिजिकली वहाँ पर होती है, यहाँ पर हम क्या करते हैं ई फॉर्म में करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही जर्नल लेते हैं, ई बुक्स लेते हैं, थीसिस, डिजर्टेशन, ऑनलाइन डेटाबेसिस सभी कुछ ले लेते हैं। इसका हम सिर्फ एक चीज़ जो इम्पोर्टेंट है वो है आपका इंटरनेट कनेक्शन ज़रूरी है। तो इसमें एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एक बॉर्न डिजिटल होती हैं जो ई रिसोर्सेज हैं, एक होता है आपका जो आपको प्रिंट में ऑलरेडी है और आपने स्कैन और डिजिटाइज किया दोनों को। जैसे आप हमारे पास कुछ ओल्ड रेयर डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम स्कैन करके डिजिटाइज करके अपना अपलोड करना चाहते हैं, तो वो भी हुआ डिजिटाइज मगर बॉर्न नहीं हुआ। बॉर्न में आपको क्या करते हैं, मटेरियल जो डायरेक्टली ऑनलाइन प्रोड्यूस होता है, जो ऑनलाइन, जैसे कि अब आजकल जो मटेरियल है ये सारा ही बॉर्न डिजिटल है। ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जाता है क्वेश्चन इसका कि वॉट इज़ बॉर्न डिजिटल। तो टर्म डेटाबेस जो है कैसे रेफर की जाती है, इसमें हम लोग डेटाबेस में आप देखेंगे डेटाबेस एक कलेक्शन होता है बहुत सारी चीज़ों का, न्यूमरिक, टेक्सुअल, में इमेजेस, जर्नल्स, मैगजीन्स, जो जो भी जिसके पास होता है और पुराना नया जो भी होता है डेटाबेस में हम कॉमनली ये सब चीज़ें डालते हैं। तो इसमें एक सर्च फैसिलिटी भी होती है, अगर आपने कोई स्कैन किया, डॉक्यूमेंट अपलोड किया, पर आप क्या करेंगे, आप ज़रूर इसका मेटा डेटा बनवाएंगे ताकि आपको जो है सर्चिंग फैसिलिटी मिलती रहे। अगर मैं कुछ ढूंढना चाहती हूँ, मैं 1990 का अपना एनुअल रिपोर्ट ढूंढना चाहती हूँ, तो अब मैं वहाँ तक तो पहुँचूंगी अगर सर्चिंग फैसिलिटी होगी। मैं ऊपर कीवर्ड डाल दूंगी एनुअल रिपोर्ट, फिर देखूंगी 1990 वाला चाहिए तो डाल के मुझे फट से वहाँ तक ले जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है ये इसमें फैसिलिटी मिलती हैं। पहले यूजुअली ज़्यादातर जो ऑनलाइन रिसोर्सेज होते हैं, इंटरनेट नहीं था तब, तब हमारे पास प्रिंटेड या सीडी रोम्स वगैरह में आते थे, ये बुक्स के साथ भी आते थे, इसको हम कंप्यूटर पे लगा के देख सकते थे। पर अब जो है आपको हमेशा इंटरनेट होने का कनेक्शन होना चाहिए, आप कहीं से भी कोई भी इन्फॉर्मेशन डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स हैं, ये आप भी याद रखिएगा, एल्सवेयर एक पब्लिशर है जो साइंस डायरेक्ट का एक डेटाबेस बनाते हैं, वहाँ से आप साइंस से रिलेटेड बुक्स को देख सकते हैं, जर्नल्स को देख सकते हैं। ऐसे स्प्रिंजर है, स्प्रिंजर लिंक है, जहाँ से आपको बुक्स, सीरीज, जर्नल्स सब कुछ मिल जाते हैं, ये भी साइंस से ही रिलेटेड मिल जाते हैं। एल्सवेयर में आपको दूसरे सोशल साइंसेज भी मिलते हैं। पहले हम लोग क्या जो बिब्लियोग्राफिक डेटाबेसेस जो बनाते हैं, जेगेट और स्कोपस है, ये क्या करते हैं, ये आपको एब्स्ट्रैक्ट्स उन जर्नल्स का, बुक्स का उसमें डाल देते हैं, जहाँ से आप पढ़ लेंगे जेगेट को मैं जा करके, और अगर आपको ये चाहिए ये वाला आर्टिकल तो आप सेम उस आर्टिकल की कॉपी मंगवा सकते हैं, क्योंकि आपको पूरा आर्टिकल नहीं पढ़ना पड़ा, आपने इसको यहाँ से डाटा बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस में देख करके आपने देख लिया नया क्या आया है, इसमें से मुझे यही आर्टिकल चाहिए, तो ये वहाँ से आपको मिल जाता है। ये इस तरह की बिब्लियोग्राफिकल डेटाबेस है, जैसे जेगेट और स्कोपस, ये भी आप एग्जांपल्स याद रख सकते हैं। फिर बात होती है रिसोर्स शेयरिंग की। रिसोर्स शेयरिंग एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है, आपको पता है कोई भी लाइब्रेरी सक्षम तो नहीं हो सकती कभी भी, क्योंकि हर समय हमारे पास फंड्स की कमी तो डेफिनेटली रहती, स्पेस की भी रहती है, और हर किसी के पास इतना स्टाफ भी अवेलेबल नहीं होता कि हम हर चीज़ को मेंटेन कर पाएँ। तो इस तरह से आप सेल्फ सफिशिएंट कभी भी नहीं हो सकते, क्योंकि इतने रिसोर्सेज और इतनी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है मार्केट में, तो आप कभी भी इसको फुलफिल नहीं कर सकते। तो क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग कंसोर्शिया बना लेते हैं, कॉमन शेयरिंग ऑनलाइन रिसोर्सेज, डेटाबेस, ऑनलाइन जर्नल्स, बुक्स का कंसोर्शिया बन जाता है, थीसिस, डिजर्टेशंस का, तो आप उसका एक पार्ट बन सकते हैं। मोस्टली यूनिवर्सिटीज जो है ये कंसोर्शिया का पार्ट बन जाते हैं, और वहाँ से आप एक दूसरे के डॉक्यूमेंट्स को भी देख सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है कंसोर्शिया की है इंडेस्ट करके, इंडियन नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी इन इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बनाई हुई है, 2003 में लॉन्च हुई है। यहाँ पर आपको कंसोर्शिया मिलेगा इस नाम से, जहाँ पर ई जर्नल्स, ई बुक्स, ई रिसोर्सेज सारे आपको मिलेंगे, आपको टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बुक्स मिलेंगे सारे। तो इसी तरह से यूजीसी इंफोनेट ने डिजिटल लाइब्रेरी कंसोर्शिया 2003 में बनाए, जो कि हर किसी अपने कॉलेज की, यूनिवर्सिटीज़ की लाइब्रेरीज़ को पार्ट दे एक्सेस दे देती है, जहाँ से वो लोग देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसको यूजीसी खरीदता है, इस कंसोर्शिया को यूजीसी ने बनाया, पर यूज़ कौन करता है, फुल टेक्स्ट बिब्लियोग्राफीज हैं इसमें, फुल टेक्स्ट डेटाबेसिस हैं इसमें, सारी यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस यूज़ कर सकते हैं इसको आप। इससे क्योंकि आपकी टीचिंग लर्निंग भी इन्हांस हो जाती है, आपकी टीचिंग लर्निंग की एक्टिविटीज़ भी बेटर हो जाती हैं क्योंकि आप लेटेस्ट पढ़ पाते हैं वहाँ से। तो इन कंसोर्शिया से बहुत ज़्यादा फ़ायदा अपने स्टूडेंट्स का होता है, रिसर्च जो है बेटर हो जाती है, बेनिफिट हो जाता है हमारे मेम्बर्स का। ट्रेनिंग की ट्रेन किए जाते हैं लाइब्रेरियंस या रिसर्च स्कॉलर्स या जो भी यूज़ कर रहे हैं उसको, जैसे यूज़र एजुकेशन जिसे कहते हैं, उस तरह से हम इनको ट्रेन होने के बाद इस लाइब्रेरी को बहुत बढ़िया तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हमारे पास हर चीज़ है पर हमने आपको वो टूल्स नहीं समझाए, यूज़र ट्रेनिंग नहीं दिया, तो आप उस लाइब्रेरी को यूज़ करना भी थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। इंफॉर्मेशन होती बहुत है पर उस तक एक्सेस करना और उसे रिट्रीव करना इतना आसान नहीं होता है। रिमोट एक्सेस की बात ये कर रहे हैं, रिमोट एक्सेस में हम लोग यूजुअली क्या किया है, लोगों ने आईपी बेस्ड कर रखा है अपने जो भी उनके पास ई कंटेंट है उसमें, वो क्या करते हैं यूज़र नेम पासवर्ड दे देते हैं ईच अपने यूज़र को, वो वहाँ से प्रॉक्सी सर्वर से एक्सेस कर लेते हैं और वहाँ से उनको, जैसे कि यहाँ पर हमने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी का दिखाया कि वहाँ के यूज़र्स के लिए ये इजीली एक्सेसिबल है। पर अगर देखा जाए तो NIS ने इसको और बेटर, ईजियर और ज़्यादा एक्सेसिबल बनाया है क्योंकि आपको वहाँ पर पासवर्ड या यूज़र आईडी की कोई भी ज़रूरत नहीं है, आप अपना सीधा जाइए आपको ओपन एक्सेस मिल जाता है और आपको जो डाउनलोड करना है, देखना है, पढ़ना है, आप वो कर सकते हैं। और लास्टली देखा गया है कि हमारे पास अब यूनियन कैटलॉग और वेब ओपैक है। वेब ओपैक ये है कि आप कभी भी 24 घंटे में कभी भी देख सकते हैं कि आप क्या चाहते हो, कौन सी बुक है नहीं है अवेलेबल। पहले तो हम ये देखते थे कि अब जब इंटरनेट का कनेक्शन होगा, जब हम जाएंगे लाइब्रेरी में, तभी हम उसी कंप्यूटर पे बैठ के वेब ओपैक के बारे में देखेंगे, क्योंकि अब ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ये अब ओपैक नहीं वेब ओपैक बन गया है। तो दूसरा है इसका डिजिटल रेफरेंस सर्विसेज मिल जाती हैं। अगर आपने किसी से बात की, आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ईमेल या जैसे भी आपको रेफरेंस चैटिंग हुए, कहीं किसी भी तरह से आपको आपके जो डिजिटल रेफरेंस सर्विसेज से कनेक्ट किया जाएगा। ईमेल के थ्रू आपको सारी फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, फिज़िकली आपको लाइब्रेरी आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। या अगर आप वेबसाइट पर जा कर के देख भी रहे, FAQs बहुत सारी लाइब्रेरीज़ ने बहुत डाला हुआ है, मोस्टली आंसर आपको वहीं से ही मिल जाता है। ये सारी जो है फैसिलिटीज़ हैं हमारी मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज़ में। हम रीडर एडवाइजरी सर्विसेज भी हैं इसमें। किस तरह की रीडर एडवाइजरी सर्विसेज है, जो कि आपको वैल्यू एड कर देता है सर्विसेज में, आपकी मैचिंग कर रहता है राइट बुक से, आप जिसे हम SDS सर्विसेज कहते थे, सिलेक्टिव डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, उसमें यही देखा जाता है कि आप क्या चाहते हैं, आप किस तरह के यूज़र हैं और आपकी नीड क्या है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको उस कंटेंट तक पहुंचाया जाता है। वेब टू टूल्स में आपने देखा है कि फ्लिकर है जहां पर आप फोटोज शेयर कर सकते हैं, यूट्यूब है जहां पर आप वीडियोस अपलोड कर सकते हैं और ऑडियो शेयर कर सकते हैं, माई स्पेस है फॉर टेक्स्ट को, टेक्स्ट बेस्ड इन्फॉर्मेशन को अपलोड करने के लिए, आप अपना कंटेंट क्रिएट कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, ये सब सारी चीज़ें आपको वेब टू टूल्स में है। ये सारे पॉइंट्स हैं आपको जो कि आपको याद रखने चाहिए और इन्हें अच्छे से पढ़ लो एक बारी, ताकि मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज में आपको क्या क्या चीज़ें हैं, किन किन चीज़ों का फ़ायदा है आप देखोगे। तो इस लाइब्रेरी में आपको बहुत ज़्यादा फायदे हैं, नुकसान कम है, क्योंकि आप स्पीड से काम कर पाएंगे, अपने जहाँ बैठे हैं, जिस चेयर पे हैं, एक आपके पास कंप्यूटर है, टर्मिनल है और आपके पास इंटरनेट है, तो आप हर चीज़ के साथ एक्सेसिबल हैं और ज़्यादा ऑप्शंस हैं आपके पास। और सबसे बड़ी बात है, ये अपडेटेड रहती है ये वाली इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन को हमें अलग से दूसरा वर्जन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये इन्फॉर्मेशन हमेशा अपडेट होती रहती है, ये चेंज होती रहती है, ये स्टैटिक नहीं है, ये चेंज होती रहती है। तो ये सारी चीज़ें जो थी, ये थी मॉडर्न लाइब्रेरी सर्विसेज के बारे में। होप आपने समझ लिया होगा इस लेसन को। थैंक यू वेरी मच।